भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 4 जून को लीडर्स समिट करेंगे, वो भी वर्चुअली। कोविड-19 के इस टाइम में दोनों देशों के बीच व्यापार और नागरिक संबंध बढ़ाने की अपार संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ नई दिल्ली से भारत से जुड़े हैं भारत के वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर साहब। अनुराग जी, सबसे पहले SBS रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद जय।
नमस्कार आपको भी। अनुराग जी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस समिट को लेके बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सारी तैयारियां हैं। यहाँ जो भारत का जो डायस्पोरा है, भारतीय मूल के जो लोग हैं वो देख रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में मोर और लेस भारत को एक तरह का विकल्प माना जा रहा है। जिस तरह की परेशानियां चाइना को लेकर हासिल हो रही हैं या कोविड-19 को लेकर हासिल हो रही हैं, उन सब के मद्देनजर आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? आप लोग किस मन से और किन मुद्दों के साथ इस वर्चुअल समिट में आ रहे हैं?
मेरा मानना है कोविड की चुनौतियों ने जो वर्चुअल समिट करने पर मजबूर कर दिया है। पहले ऑस्ट्रेलिया में जो फायर्स आई तो उसके कारण प्रधानमंत्री जी का दौरा नहीं हो पाया ऑस्ट्रेलिया के, और अब कोविड-19 की सिचुएशन करके आया है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, जितनी मर्जी चुनौतियां आए, जितनी मर्जी बाधाएं आए, भारत और ऑस्ट्रेलिया का आपस में संबंध पहले से और बेहतर होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये चुनौतियां हम सबको एकजुट करने के लिए लगातार अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे। जैसा आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने भी समोसे बनाकर किस तरह से मोदी जी को निमंत्रण दिया, वो अपने आप में भारत में एक बहुत बड़ी खबर बनी। तो एक दूसरे को कल्चर को जानना ये बहुत बड़ी बात है। और जय, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। आप जैसे लोगों का एक बहुत बड़ा रोल वहां पर है, इंडियन डायस्पोरा का। किस तरह से हम दोनों देशों के बीच में संबंध और अच्छे कर सकते हैं? कुछ देश मैंने ऐसे देखे, क्योंकि मैं पार्लियामेंट के बहुत सारे डेलीगेशंस को हेड करता था, विशेष तौर पर जर्मनी और यूएस को भी मैं जब डेलीगेशंस लेकर जाता था, तो बहुत बड़े एफर्ट्स इन देशों के माध्यम से होते हैं यहाँ पर MPs के साथ इंटरेक्शन करने का, लोगों के साथ, इंडस्ट्री के साथ करने का, ताकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल तो हो लेकिन उसके निचले स्तर पर भी लगातार आपस में हम सबकी बातचीत होती रहे। तो मुझे लगता है ये करना बहुत आवश्यक है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्योंकि ये जो नए समीकरण बन रहे हैं ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर खड़े कर सकते हैं। आज ट्रेड और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जितना होता है वो ऑस्ट्रेलिया का भारत से 3 गुना ज्यादा होता है, यानी कि भारत जितना एक्सपोर्ट करता है उससे 3 गुना ज्यादा इम्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया से करता है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे अवसर और हैं करने के,
अगर
मुझे
मैं
लगता है।
आपको अनुराग, जब आप अवसर की बात कर रहे हैं तो कौन से वो 3 सेक्टर्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार की दृष्टि से?
देखिए, अगर आप भारत की मांग को देखेंगे तो अलग रहेगी, ऑस्ट्रेलिया की मांग को देखेंगे तो अलग रहेगी। मान लीजिए अगर हम यहाँ से पेट्रोकेमिकल्स या जेम्स एंड ज्वेलरी भेजते हैं तो वहीं के आपकी ओर से कोल से लेके बाकी सब प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आते हैं, मिनरल से लेके बाकी सब आते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने आप को इतने कम दायरे में बांधना क्यों, अभी बहुत कम सेक्टर्स में हम लोग ट्रेड कर पाते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड बहुत ज्यादा है और भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है। तो मुझे लगता है इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है, किस तरह से दोनों देश ज्यादा एंगेज कर पाए और दोनों डेमोक्रेसीज होने का कैसे लाभ उठा पाए, और दोनों शांतिपूर्ण जीने की बात करते हैं, दुनिया को कोई खतरा ना ऑस्ट्रेलिया से है ना भारत से है, दोनों ही बड़े शांतिपूर्वक ढंग से जीने वाले देश हैं। और मुझे लगता है यही बड़ा कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से G7 में इंडिया को न्योता दिया है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को भी न्योता दिया है। तो मुझे लगता है इस पूरे रीजन में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी भूमिका सुरक्षा की दृष्टि से हो सकती है, और दोनों को आपस में संबंध और अच्छे करने चाहिए, विश्वास आपस में और बढ़ना चाहिए, दोनों में एंगेजमेंट और होनी चाहिए, चाहे वो ग्लोबल सिक्योरिटी की बात हो, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई की बात हो, ट्रेड की बात हो, इन सब क्षेत्रों में भारत का करना बहुत और ऑस्ट्रेलिया का अच्छा करना बहुत जरूरी है। अगर आप हाल ही में देखें, ऑस्ट्रेलिया के हजारों लोग भारत में कोविड-19 के कारण फंसे हुए थे, तो आपके यहाँ से कई लोगों ने मुझसे बात की तो हमने जल्दी से प्रावधान करके उनको वापस ऑस्ट्रेलिया भेजने का काम किया है। आप सब लोगों ने हमसे बात की तो हम भी उस पर कदम उठा पाए और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को जो चाहे भारतीय मूल के हों या ऑस्ट्रेलिया मूल के उनको वहां पर वापस भेजने का हमने काम किया है। आगे भी मुझे लगता है कि जो हमारा आपस में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, एक रिश्ते अच्छे हुए हैं, इसमें खेलों की, शिक्षा की, व्यापार की और हमारे कल्चर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आप देखिए स्पोर्ट्स एक इतना बड़ा सेगमेंट है लेकिन हम उसका उतना दोहन नहीं कर सके, उसका एडवांटेज उतना दोनों देश नहीं ले पाए। एजुकेशन में एक तरफा ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज है लेकिन दोनों देशों को बहुत उसमें अच्छा किया जा सकता है। कल्चर पर दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, माइंस एंड मिनरल्स बहुत बड़ा सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत बड़ा सेक्टर है। मुझे लगता है ये जो भारत के पास यूथ पावर है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, स्किल मैन पावर भारत के पास ज्यादा अवेलेबल हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया को किस तरह की स्किल्ड मैन पावर चाहिए, क्या ऑस्ट्रेलिया भारत उस पर भी बात कर सकती है? मान लीजिए मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, क्या मैं अपने राज्य का ऑस्ट्रेलिया के किन्हीं दो स्टेट से टाई अप करवाऊं कि यहाँ के युवा को ऑस्ट्रेलिया की डिमांड क्या है उसके अनुसार उनको प्रशिक्षण देकर, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, वेल्डर हो, प्लम्बर्स हो, तो आपको एक पढ़ा लिखा युवा स्किल्ड मैन पावर के रूप में मिल पाएगा और ऑस्ट्रेलिया को जान पाए कि वहां का कल्चर क्या है उसको यहाँ पर पहले ही सिखाकर भेजेंगे ताकि यहाँ आपके वहां के मापदंडों के अनुसार वो अच्छा कर सके। तो क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं? मैं आपसे इस पर भी कुछ जानना चाहूंगा।
अनुराग, ये तो अपार संभावना वाला चीज है। जब भी हम लोग एक्सपर्ट से बात करते हैं तो ये पता चलता है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट हों या एडवांस इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट हों जो भारत से कोलैबोरेट करना चाहते हैं, मगर उनकी एक ही सवाल होता है कि भारत एक बड़ा मुश्किल देश है, वहां पर अपने रिलेशन बनाने या पार्टनर्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस फ्रंट पे आप लोग कैसे करेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया के व्यापारी वहां व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें परेशानी ना हो?
एक काम तो आज आप कर लीजिए, जिसको भी तकलीफ आती है आप मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी और मेरे ऑफिस के नंबर्स आप उनको दे सकते हैं। किसी भी ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति को, व्यवसायी को, वहां के नागरिक को भारत में किसी तरह की मदद चाहिए, मैं आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ। इसके अलावा हमने जो निवेश करने वाले उनके लिए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज इसका गठन करने जा रहे हैं ताकि जो भी निवेश भारत में आता है उनको कम समय के अंदर लैंड से लेकर परमिशन सब कुछ उपलब्ध करवाई जाए और वो अपना यूनिट्स जल्दी यहाँ पर शुरू कर सकें, व्यापार जल्दी शुरू कर सकें। तो एक कांटेक्ट आपके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए हो सकता है अनुराग ठाकुर, और सरकार तो है ही है लेकिन व्यक्तिगत रूप से जहाँ पर भी दिक्कत होगी मैं अपनी ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मोदी सरकार की ओर से हम प्रयास करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोई भी निवेश या किसी भी तरह के किसी को सहायता चाहिए हम उनमें उनकी मदद करेंगे।
धन्यवाद आपका अनुराग जी, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, मगर क्या सरकार के स्तर पर एक ऐसा सिंगल विंडो या सिंगल ऑफिसर बन सकता है जिससे जहां ऑस्ट्रेलिया के व्यापारी या व्यापार करने के इच्छुक लोग काम कर सके? दूसरा, भारत का एक बड़ा डायस्पोरा, एक बहुत भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं तो वो भी भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, उनकी काफी स्किल्स हैं, उनके लिए क्या एवेन्यूज हो सकते हैं?
देखिए बहुत सारे हो सकते हैं। पहली बात तो है कि जैसे हमने NIIF एक फंड बनाया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड ने भी यहाँ पर $1 बिलियन के लगभग इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट है ये भारत में जहां पर बहुत अच्छी रिटर्न्स आ सकती हैं। हम 103 लाख करोड़ रुपए की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ये बना रहे हैं जिसपे 5 साल में 103 लाख करोड़ रुपया हम देश में खर्च करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा पैसा जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा तो बहुत सारे अवसर आपके वहां के लोगों के लिए है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर बाकी सेक्टर्स में। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करके केवल 15% इसको कर दिया है, ये दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव टैक्स रेट है जिससे लोगों को लगातार कई वर्षों तक केवल 15% ही टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ साथ और बहुत सारे इंसेंटिव्स राज्य की सरकारों ने अलग से दिए हैं और ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जैसा मैंने पहले कहा भारत सरकार बनाकर दे रही है ताकि जल्द से जल्द आपको परमिशन अनुमति मिल सके। तो सारे कदम उस दिशा में है कि हम इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कर सकें ताकि दुनिया भर के लोग आए और जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो आपने इंडियन डायस्पोरा की बात कही, उनके लिए तो और भी सहयोग होगा, क्योंकि वो यहाँ के कामकाज की स्थिति को जानते हैं। हमने हर मंत्रालय में प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेल बनाने की बात कही, ताकि किन किन प्रोडक्ट्स को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमने जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के, सभी को ही प्राइवेटाइज करने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसमें भी निवेश वो लोग आकर कर सकते हैं। और जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, उसमें भी केवल एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रहेगी और मैक्सिमम 4 रहेंगी। तो इसका मतलब 4 से बाहर जितनी है, उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। कई जगह तो 1 से ज्यादा जो है, उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो बनी बनाई कंपनीज में भी ब्राउन फील्ड में आप अपना निवेश कर सकते हैं, बहुत बड़ा मौका है। हमने जैसे कहा कि हथियार बनाने के लिए लिस्ट ऑफ वेपन्स हम लोग तय कर देंगे जो भारत में बनेंगे, और FDI को भी 49% से 74% कर दिया है, जिससे बहुत बल मिलेगा, क्योंकि मार्केट भारत की सबसे बड़ी है हथियारों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम करते थे। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए, स्पेशली मोबाइल के लिए, हमने इंसेंटिव और बढ़ा दिया है। हम दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं, नंबर 1 बनने के लिए हमने ये इंसेंटिव भी देने शुरू कर दिए हैं, उसमें भी आप आ सकते हैं। हॉर्टिकल्चर से लेके एग्रीकल्चर में कहीं पर भी आपकी रुचि हो, तो बहुत बड़े अवसर भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो आप वहाँ की टेक्निक को यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से एजुकेशन और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी टाई अप्स हो सकते हैं। मैं अपनी ओर से निमंत्रण देता हूँ, हिमाचल प्रदेश में एक हाई एल्टीट्यूड या हाई परफॉर्मेंस सेंटर मैं बनाने जा रहा हूँ एक संस्था के माध्यम से। अगर आप चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया से कोई उसमें साथ में जुड़ना चाहता है, तो हम उनको साथ में जोड़ लेंगे, ताकि टेक्नोलॉजी को लेकर हम यहाँ पर एथलीट्स को भी क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में उनकी ट्रेनिंग करने का हम एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, जिससे कि उनको प्रोफेशनल ढंग से ट्रेनिंग दी जा सके, तो वो भी किया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए किसी को करना, हम वो भी कर सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पर कॉल सेंटर्स की या बैकएंड ऑफिस की जरूरत है, तो उसके लिए भी हम लोगों के लिए यहाँ पर सहयोग करवा सकते हैं, ताकि छोटी संस्थाओं के साथ उनको जोड़कर कॉस्ट इफेक्टिव वे में उनका सहयोग हो सके।
अनुराग जी, आपने तो अपार संभावनाओं का द्वार खोलने का काम कर रहे हैं आप। और हाँ, भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया इस दिसंबर आ रही है, आपका भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत स्वागत है।
थैंक यू,
धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और भारत को हमेशा जोड़े रहेगा, और शायद ये रास्ता भी हम लोग एक साथ ही निभाएंगे। कल की जो बातचीत है, कल का जो समिट है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं।
धन्यवाद। मैं एक बात यहाँ पर जरूर जय भाई कहना चाहता हूँ कि देखिए, क्रिकेट तो जरूर जोड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी जब फाइनल हुआ, तो देखा कि पूरा ब्लू स्टेडियम हो गया था फाइनल से पहले जब मैच हुआ, तो मैंने टीवी पर देखा कि पूरा स्टेडियम एक तरह से ब्लू देखने को मिल रहा था। तो अपने आप में दिखता है कि किस तरह से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप लोग वहां पर काम करते हैं। आपकी दोहरी भूमिका है इंडियन डायस्पोरा की, आप ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के हितों की रक्षा करनी है, दोनों देशों को नजदीक लाना है, दोनों के बीच में जो संबंधों को और अच्छा करना। आप एक एम्बेसडर के रूप में सब लोग वहां पर काम करते हैं, ताकि भारत की छवि अच्छी हो, भारत के लोगों की छवि अच्छी हो, और आप लोगों ने शानदार काम पिछले कुछ वर्षों में किया है। लेकिन आज आप उस मुकाम पर खड़े हैं जहां आने वाली पीढ़ी को भी आपको जागरूक करना है, उनको भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके साथ जोड़कर रखना है, भारतीय परंपराओं के साथ जोड़कर रखना है, और दोनों देशों के बीच में संबंध और अच्छे करने हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी लगाव भारत के साथ बना रहे बहुत आवश्यक है। और व्यापार जब बढ़ेगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और बाकी सेक्टर्स में हम अच्छा करेंगे, तो निश्चित तौर पर अपने आप ही बहुत सारे संबंध और अच्छे चले जाते हैं। तो मुझे लगता है आप जैसे लोग जब डायस्पोरा को वहां पर लीड कर रहे हैं, और हमारी बात अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भाषाओं में पहुंचाने का काम करेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है जब मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर आऊंगा, तब भी मैं आप सबसे मिलूंगा। लेकिन उससे पहले अपने अपनी जगह, अपने अपने पदों पर रहकर हम दोनों देशों को मजबूत करने का काम करेंगे। कल दोनों देशों के प्रधानमंत्री दोनों देशों को आगे ले जाने के लिए एक अच्छा बातचीत करने वाले हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो G7 में भी दोनों देशों को बुलाया गया है, एक बहुत बड़ा कदम भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए है। आइए, दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए, दुनिया भर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद बातचीत के लिए।
जय हिंद। थैंक यू।